ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। ईरान और इजराइल में एक दूसरे पर मिसाइल हमलों के कारण संघर्ष जारी है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने ईरान पर इजरायली हमलों में अमेरिका के शामिल होने के बाद एक वक्तव्य में कहा कि इजराइल को इसका खामियाजा भुगतना होगा। इस बीच ईरान के अधिकारियों ने कहा कि उसकी सेना परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी हमलों के जवाब का समय, प्रकृति और मात्रा का निर्धारण कर रही है। इससे पहले फोदो, नतांज और इस्फहान के परमाणु प्रतिष्ठानों पर अमरीकी हवाई हमले की प्रतिक्रिया में ईरान की संसद ने एक मत से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। हॉर्मुज विश्व के अत्यधिक महत्वपूर्ण तेल और गैस के लिए नौवहन मार्ग है। विश्लेषकों का मानना है कि अगर गतिरोध जारी रहता है तो तेल की कीमत प्रति बैरल $100 के ऊपर जा सकती है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के जरिए विश्व के कुल तरल प्राकृतिक गैस नौवहन तथा वैश्विक तेल निर्यात का लगभग 20% कारोबार होता है। इस बीच अमरीकी सैन्य अधिकारियों ने अत्यधिक चौकसी बरतते हुए इस क्षेत्र में सैन्य बलों को तैनात किया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची आज रूस पहुंच चुके हैं। वे अमरीकी सैन्य कार्रवाई के बाद क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ परामर्श कर सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंटोनियो गुटेरेस ने न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में सुरक्षा परिषद के आपातकालीन विशेष सत्र के दौरान शांति की अपील की। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में सत्ता परिवर्तन की संभावना का संकेत दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान की वर्तमान सत्ता ईरान को फिर से महान बनाने में असमर्थ है तो नेतृत्व में परिवर्तन होना चाहिए। इस बीच पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार पिछले 2 सप्ताह से पश्चिम एशिया की स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। श्री पुरी ने कहा कि इस समय भारत ईंधन के लिए केवल हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर ही निर्भर नहीं है।
There is enough oil available in the global markets. More and more oil is coming on the global markets, and even the traditional suppliers would be interested in keeping the supplies on because they also need the revenue. So hopefully the market will factor that in. But as I said, the Modi government has over the past several years not only ensured the stability of supplies but also affordability, and we will take all necessary measures to ensure that.
विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने ईरान के माशाद से कल रात विशेष उड़ान से नई दिल्ली लौटे 285 भारतीय नागरिकों का हवाई अड्डे पर स्वागत किया। श्री मार्गरीटा ने कहा कि मंत्रालय ईरान और इजराइल में सभी भारतीय नागरिकों के साथ लगातार संपर्क में है।
Total number of evacuated Indian nationals from Iran stands now at 1,713, and we have scheduled 2-3 more flights from Iran for the next 2 days. And the same way, we are constant contact with all our Indian nationals residing there in Iran and Israel also.
भारत ने इसराइल से घर लौटने के इच्छुक श्रीलंकाई लोगों के लिए अम्मान से नई दिल्ली की उड़ानों में सीट देने की पेशकश की है। इसराइल में श्रीलंकाई दूतावास ने इनकी घोषणा की। तल अवीव से अम्मान और दिल्ली के लिए उड़ान भी निशुल्क प्रदान की जाएगी। हालांकि यात्रियों को नई दिल्ली से कोलंबो के लिए टिकट की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। राष्ट्र आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने देश की अखंडता को अक्षुण रखने के लिए अतुलनीय साहस का परिचय दिया। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। श्री नड्डा ने कहा कि देश भर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। डॉक्टर मुखर्जी के योगदान की सराहना करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि वे स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक थे। पश्चिम एशिया में भू राजनीतिक तनाव बढ़ने के बाद कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच घरेलू शेयर बाजार सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी आज दोपहर लगभग 0.7% की मामूली गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। अंतिम समाचार मिलने तक बम्बई शेयर बाजार का संविदी सूचकांक 599 अंक गिरकर 81,809 पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 171 अंक गिरकर 24,941 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।